बस के भीतर हलचल थी, हंसी, आवाजें, सीटें बदलने की जिद, खिड़कियों से बाहर झांकते चेहरे। शामली रम्या के साथ वाली सीट पर बैठी थी। रम्या खिड़की से बाहर देख रही थी जैसे रास्ता भी पिकनिक का हिस्सा हो। थोड़ी ही देर में रम्या की दो तीन सहेलियां पीछे की सीटों से उठकर उनके पास आ गईं। उनकी आंखों में वही बेझिझक उत्सुकता थी जो बच्चों में होती है। दीदी, एक ने मुस्कुराकर कहा, आप रम्या की कौन लगती हो? शामली हल्का सा चौंकी, फिर मुस्कुरा दी, मैं उसकी मामी हूँ। रम्या तुरंत बोल पड़ी थोड़ी शान के साथ, तो फिर ये तुम्हारी भी मामी हुई? सहेलियां हंस पड़ी। दूसरी ने रम्या को चिढ़ाते हुए कहा, अरे रम्या, ये तो हमसे बस दो चार साल ही बड़ी लगती हैं, ऐसे में मामी को हम दीदी ही बुलाएंगे। हाँ, तीसरी ने हामी भरी, बड़ी बहन जैसी लगती हैं। शामली के चेहरे पर हल्की सी झिझक आ गई। अरे नहीं, उसने नरमी से कहा, मामी ही ठीक है, लेकिन लड़कियां मानने वाली कहाँ थी? नहीं दीदी, एक ने मासूमियत से कहा, आप बहुत सादी और बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, दूसरी बोली, आजकल तो सब आंटी टाइप मामी होती हैं, लेकिन आप अलग हो। रम्या गर्व से मुस्कुरा रही थी, जैसे तारीफ उसी की हो रही हो। मेरी मामी सबसे अच्छी हैं, उसने घोषणा की। शामली ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। दिल के भीतर कहीं एक गर्म सी लहर दौड़ गई, इतनी सच्ची, इतनी हल्की। बस आगे बढ़ती रही। खिड़कियों से हरियाली दिखने लगी, सड़क पतली होती चली गई, बच्चों की आवाज़ें और तेज़ हो गईं। अब पिकनिक करीब थी। कुछ ही देर में बस ने रफ्तार कम की, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। आ गया, किसी बच्चे की आवाज़ गूंजी, बस रुक गई। हवेली के भीतर दोपहर की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन शकुंतला के कमरे में अब भी एक अलग सी बेचैनी ठहरी हुई थी। खिड़की से बाहर आंगन दिख रहा था, वही पुराना शांत आंगन, मगर शकुंतला का मन वहां टिक ही नहीं पा रहा था। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी, कभी खिड़की के पास जाती, कभी पलंग के सिरे पर बैठ जाती, नज़र बार बार दीवार पर लगी घड़ी की ओर चली जाती। पता नहीं ठीक से पहुंचे होंगे या नहीं, उसने बुदबुदाकर कहा। रम्या की हंसी, उसकी भागती हुई शक्ल सब आंखों के सामने घूम रहा था। पिकनिक थी, बच्चे थे, भीड़ थी, माँ का मन कब शांत होता है। आखिर उसने मेज पर रखा मोबाइल उठाया, थोड़ा सा रुककर शामली का नंबर मिलाया। दूसरी ओर से कॉल लगते ही कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर हेलो शामली। शामली की आवाज़ सुनते ही शकुंतला की सांस थोड़ी हल्की हुई। हाँ, उसने तुरंत कहा, सब ठीक ठाक पहुँचे ना, रम्या कैसी है? जी दीदी, शामली ने नरमी से जवाब दिया, सब बहुत अच्छा है, बच्चे रास्ते भर हंसते बोलते आए, रम्या तो बहुत खुश है। शकुंतला पलंग के किनारे बैठ गई। पिकनिक वाली जगह कैसी है, उसने आगे पूछा, भीड़ ज़्यादा तो नहीं? नहीं, शामली बोली, खुली जगह है, पेड़ है, मैदान है, टीचर्स भी सबको संभाल रहे हैं। फ़ोन के उस पार शकुंतला की आँखें अपने आप बंद हो गईं, जैसे दिल ने थोड़ी राहत ले ली हो। उसने नाश्ता किया, माँ की आदत फिर जाग उठी। शामली हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ दीदी, रास्ते में ही कर लिया था, अभी अपने दोस्तों के साथ घूम रही है। तुम ध्यान रखना शामली, शकुंतला ने धीमे से कहा, मुझे बस ये जानना था कि सब ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए, शामली की आवाज़ में भरोसा था, मैं यहीं हूँ उसके साथ। फ़ोन कट गया। शकुंतला ने मोबाइल मेज पर रख दिया, वो फिर खिड़की की ओर चली गई। आंगन अब भी वैसा ही था, शांत, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी थोड़ी कम हो चुकी थी। फिर भी माँ का दिल पूरी तरह कभी निश्चिंत होता है? तीसरी तरफ मूवी थिएटर के भीतर अंधेरा गाढ़ा था। स्क्रीन पर रोमांटिक सीन चल रहा था, दो किरदार बारिश में भीगते हुए पास आते हुए, और बैकग्राउंड म्यूजिक धीमे धीमे दिल को छू रहा था। लेकिन आर्यन का ध्यान वहां बिल्कुल नहीं था, वो सीट पर पीछे टिक कर बैठा था। आंखें स्क्रीन पर थी, मगर मन जैसे कहीं और भटक रहा था। चेहरे पर हल्की सी थकान थी, ऐसी थकान जो नींद से नहीं उलझन से आती है। जब तब वो गहरी सांस लेता, फिर छोड़ देता, जैसे भीतर कुछ दबा हुआ हो। अदिति उसके बिल्कुल पास बैठी थी, जानबूझकर, कभी उसका कंधा हल्के से छू जाता, कभी उसकी उंगलियां आर्म रेस्ट पर आर्यन के हाथ के पास आकर रुक जाती। उसके चेहरे पर वही चंचल मुस्कान थी, शरारती, निडर, थोड़ी सी फ्लर्टिंग से भरी हुई। ओ, उसने धीमे से कहा, स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए, ये सीन कितना क्यूट है ना? आर्यन ने बस हल्का सा हुम किया, नजरें नहीं हटी, दिलचस्पी भी नहीं जगी। अदिति ने उसकी तरफ देखा, एक नज़र में उसका उतरा हुआ चेहरा पढ़ लिया, मुस्कान थोड़ी धीमी हो गई। प्लीज़ यार, आर्यन ने अचानक बुदबुदाकर कहा, एक तो कॉलेज छोड़कर तुम मुझे यहाँ ले आई, उस पर तुम ये सब? अदिति ने भौहें चढ़ाई, ये सब? फिर थोड़ा नर्म होकर आवाज़ धीमी कर ली, आर्यन तुम परेशान हो ना? आर्यन ने नज़रें स्क्रीन से हटाई, एक पल को लगा जैसे सच में कुछ कह देगा, होंठ खुले फिर बंद हो गए। उसने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, वही जो वो अक्सर बात टालने के लिए इस्तेमाल करता था। नहीं, उसने कहा, बस मूवी में मन नहीं लग रहा। अदिति उसे कुछ पल तक देखती रही,
वो जानती थी ये पूरी बात नहीं है। उसकी आंखों में वो बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। मूवी खत्म हुई, लाइट्स चली। चलो, अदिति ने उठते हुए कहा, शॉपिंग करते हैं, मुंह ठीक हो जाएगा। आर्यन ने बिना बहस के हामी भर दी, शायद उसे भी कुछ देर के लिए दिमाग खाली करना था। मॉल की रोशनी एकदम अलग दुनिया की थी, चमकदार फ्लोर, कांच की दुकानों में सजी रोशनियां, लोगों की आवाजें, सब कुछ जिंदा, तेज, रंगीन। अदिति जैसे उसी माहौल में घुल गई, उसकी चाल में फिर वही आत्मविश्वास लौट आया। ये देखो, वो एक स्टोर में घुसते ही बोली, आज कुछ अलग ट्राई करती हूँ। आर्यन बाहर ही रुक गया, मोबाइल निकालकर यूं ही स्क्रीन देखने लगा, बिना कुछ पढ़े। उसका ध्यान अब भी कहीं और उलझा था। कुछ मिनट बीते, फिर आर्यन, उसकी आवाज आई, नर्म लेकिन ध्यान खींचने वाली। आर्यन ने सिर उठाया और पलटा, और उसका दिल जैसे एक पल को सच में थम गया। अदिति उसके सामने खड़ी थी, एक साड़ी में। रंग बेहद सादा था, ना ज्यादा चमक ना ज्यादा दिखावा, लेकिन पहनावे में एक अजीब सी गहराई थी। कपड़ा उसके कंधों से बहता हुआ, कमर पर सलीके से सजा हुआ, पल्लू हल्का सा झुका हुआ, जैसे जानबूझकर नहीं बल्कि अपने आप। बाल पूरी तरह बंधे नहीं थे, कुछ लटें उसके चेहरे के पास आकर ठहर गई थी। चेहरा बिना ज्यादा बनावट के, बस आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो दो कदम चलकर उसके सामने आई। कैसी लग रही हूँ? आर्यन कुछ बोल ही नहीं पाया, उसकी नजरें बस उसी पर ठहर गईं। भीड़, शोर, मॉल, सब जैसे पीछे धुंधला हो गया। उसके दिमाग में बस एक ख्याल गूंज रहा था, ये वही अदिति है, वही लड़की जिसे वो रोज कॉलेज में जीन्स टॉप में देखता था, आज इस साड़ी में इतनी अलग, इतनी असरदार। अदिति ने उसकी खामोशी देखी, हल्की सी मुस्कान और गहरी हो गई। इतना बुरा लग रहा है क्या? उसने छेड़ते हुए पूछा। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। बहुत, वाक्य पूरा नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं थी।